हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 श्लोक क्रमांक 41 के आगे।
तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहियेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्।
अनुवाद। इसलिए हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। काम को, भोग की इच्छा को ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार का विनाशकर्ता क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे पिछले श्लोकों में बताया गया था, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में काम निवास करता है और इसके कारण मन की प्रवृत्ति आत्म तत्व की जिज्ञासा में नहीं होती है, भगवान के बारे में जानने की इच्छा नहीं होती है। मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में, इंद्रियों में सेवा करने की वृत्ति नहीं होती है। तो यदि इस काम को के बारे में जान करके, जैसे हमको मालूम चलता है, हम इसका दमन करना शुरू कर देते हैं, करना शुरू कर दें, तो हम इसका वध कर सकते हैं। डिप्लोमेसी में यानी कि राजनीति में चार प्रकार की चीज़ें होती हैं जिसके द्वारा हम शत्रु से संबंध करते हैं। इसे कहते हैं साम, दाम, दंड, भेद। शांति का प्रयास, मतलब सुलह करना, दाम यानी कि कुछ पैसा देना, और उसके बाद भेद यानी उस पर कुछ फूट डालना, और अंततो गत्वा दंड। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि इसमें तीनों ही काम नहीं करेंगे, न तो शांति से काम चलेगा, न तो भेद से काम चलेगा, और ना कोई पैसा देकर के हम काम को, काम रूपी शत्रु को जीत सकते हैं। सीधे दंड देना पड़ेगा, सीधे इसका दमन करने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर व्यक्ति सोचता रहे कि मैं काम की इच्छाओं के अनुसार कार्य करता रहूंगा और आध्यात्मिक जीवन में भी प्रगति करता रहूंगा, तो ये बहुत बड़ा भुलावा है, ये बहुत बड़ी मूर्खता है इस प्रकार की बात सोचना। तात्पर्य, भगवान ने अर्जुन को प्रारंभ से ही इंद्रिय संयम करने का उपदेश दिया जिससे वह सबसे पापी शत्रु काम का दमन कर सके, जो आत्म साक्षात्कार तथा आत्मज्ञान की उत्कंठा को विनष्ट करने वाला है। आपको अगर ध्यान हो तो मैं यही बात समझा रहा था मैं कि काम के कारण हम, हमारे हृदय में भगवान को जानने की उत्कंठा, लालसा ही नहीं होती है, और इस काम को भोजन मिलता है हमारे इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए आवश्यक है कि इंद्रियों के द्वारा हम काम वासना को भोजन देना बंद कर दें और अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं, तो उससे धीरे धीरे ये काम रूपी शत्रु पूरी तरह से दमित हो जाता है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा अनात्मा के भेद का बोध, अर्थात यह ज्ञान की आत्मा शरीर नहीं है, यानी ये सच्चा ज्ञान है। और बाकी सारा जो भी ज्ञान है वो इसी उद्देश्य के लिए होता है कि किस प्रकार से हम चार पार्श्विक क्रियाएं करते रहें, आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो असली ज्ञान यही है कि जब व्यक्ति समझे कि किस प्रकार से वो अपने शरीर से भिन्न है, वो भिन्न है, कोई और व्यक्ति है अपने शरीर के अलावा। विज्ञान से आत्मा की स्वाभाविक स्थिति तथा परमात्मा के साथ उसके संबंध का विशिष्ट ज्ञान सूचित होता है। यानी कि केवल यही जान लेना कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, ये पूरी तरह से कह सकते हैं पूर्ण ज्ञान नहीं है, बल्कि अपना संबंध भी हम समझ पाएं भगवान से, तब ये इसको रियलाइजेशन कहा जाएगा, इसको विज्ञान कहा जाएगा। श्रीमद् भागवत में इसकी विवेचना इस प्रकार हुई है। ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम स रहस्यम तदंगम च ग्रहाण गदितम मया। आत्मा तथा परमात्मा का ज्ञान अत्यंत गुह्य एवं रहस्यमय है, किंतु जब स्वयं भगवान द्वारा इसके विविध पक्षों की विवेचना की जाती है तो ऐसा ज्ञान तथा विज्ञान समझा जा सकता है। ये बहुत सुंदर बात है कि भगवान से अधिक आत्मा और परमात्मा यानी कि स्वयं उनके बारे में जानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो जब भगवान इस बात को समझाते हैं तो जीवात्मा के लिए परम कल्याण कार्यकारी होता है। और हम इस प्रकार से अगर भगवद्गीता के प्रवचन को सुनते हैं भगवान के द्वारा, तो निश्चित रूप से हमको आत्मबोध हो जाएगा। भगवद्गीता एवं आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। क्षमा कीजिएगा, भगवद्गीता हमें आत्मा का सामान्य तथा विशिष्ट ज्ञान, ज्ञान तथा विज्ञान प्रदान करती है। यानी कि जीवात्मा को शरीर से भिन्न दिखाती है, ये तो दूसरे अध्याय में हम पढ़ चुके हैं। साथ साथ जीवात्मा का संबंध क्या है भगवान के संबंध में, इस बात का भी ज्ञान हमको भगवद गीता से मिलता है। जीव भगवान के भिन्न अंश हैं, अतः वे भगवान की सेवा के लिए हैं। यह चेतना कृष्ण भावनामृत कहलाती है। यानी ये व्यक्ति समझ ले कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, मेरा कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना, और भगवान की सेवा में लग जाए तो फिर ये व्यक्ति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कहलाएगा। अतः मनुष्य को जीवन के प्रारंभ से इस कृष्ण भावनामृत को सीखना होता है, जिससे वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होकर तदनुसार कर्म करे। अगर हम जीवन की शुरुआत से ही भक्ति कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस भी उम्र में हमें भक्ति के बारे में सीखने का मौका मिला है, हमको उसी समय से भक्ति में बड़ी दृढ़ता से, बड़ी सीरियसली, बहुत ही गंभीरता से प्रयास करना चाहिए कि हम आगे भक्ति में बढ़ सकें और अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का ट्रेनिंग प्राप्त करनी चाहिए। काम ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है और प्रत्येक जीव के लिए स्वाभाविक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ईश्वर प्रेम का विकृत प्रतिबिंब। प्रेम का अर्थ होता है कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले प्रेम। क्षमा कीजिएगा, क्षमा जी, मेरा श्लोक ऐसे शुरू होता है, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारी बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम। जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों की संतुष्टि चाहता है तो उसको काम कहा जाता है, और जब वो भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहता है तो वो प्रेम कहलाता है। तो आप देख सकते हैं भगवद्गीता के द्वारा कि आध्यात्मिक जगत में हर जीवात्मा केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है, लेकिन भौतिक जगत में हर जीवात्मा अंततो गत्वा अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। और कभी कभी ऐसा लगे कि वो निस्वार्थ हो गया है, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो वो समाज की सेवा करता है, अपनी पहचान समाज से करके, परिवार से करके, अपने इंद्रियों की पहचान उनकी इंद्रियों से करके, क्षमा उल्टा बल्कि कहना चाहिए, उनकी इंद्रियों की पहचान अपनी इंद्रियों से करके, यानी कि वो खुद नहीं खाएगा लेकिन बच्चों को अच्छे से खिलाएगा, ये पत्नी को अच्छे से रखेगा, तो इस प्रकार से दे करके व्यक्ति सुखी होने का प्रयास करता है। और ये सब काम भावना के ऊपर आधारित है, इसीलिए यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं कि काम जो है वो ईश्वर प्रेम का प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब है, उल्टा। किंतु यदि किसी को प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी जाए तो प्राकृतिक ईश्वर प्रेम काम के रूप में विकृत नहीं हो सकता। यानी अगर पहले से ही अभ्यास है, बचपन से अभ्यास है कि हमें कृष्ण की ही सेवा करनी है, तो काम फलित नहीं होता है। एक बार ईश्वर प्रेम के काम रूप में विकृत हो जाने पर इसके मौलिक स्वरूप को पुनः प्राप्त कर पाना दुसाध्य हो जाता है। फिर भी कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि विलंब से प्रारंभ करने वाला भी भक्ति के विधि विधानों का पालन करके ईश्वर प्रेमी बन सकता है। यानी एक बार काम इच्छा हृदय में आ जाती है तो फिर भगवान के प्रेम को प्राप्त करना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। और ये भी बात हमारे लिए प्रेरणादायक है कि कृष्ण भावनामृत के जो विधि विधान हैं, भगवान के नाम का जप, भगवान के लिए मंगल आरती करना, उनको प्रसाद ग्रहण करना, उनके बारे में सुनना, तो ये बड़ी तीव्रता से हमारे चित्त पे कार्य करती है और हमारे हृदय के अज्ञान को नष्ट कर देती है। और जितनी मात्रा में हमारे हृदय का अज्ञान नष्ट होगा, उतनी मात्रा में हमारा ईश प्रेम, भगवान के प्रति जो प्रेम है, सहज प्रेम है, वो प्रकट होने लगता है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को भुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिवे उदय। हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम है वो हमेशा से व्याप्त है, लेकिन केवल ढक गया है। तो श्रवण कीर्तन के माध्यम से व्यक्ति जब अपने हृदय को शुद्ध कर लेता है तो अपने आप भगवान का प्रेम प्रकट होता है। अतः जीवन की किसी भी अवस्था में या जब भी उसकी अनिवार्यता समझी जाए, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या भगवत भक्ति के द्वारा इंद्रियों को वश में करना प्रारंभ कर सकता है और काम को भगवत प्रेम में बदल सकता है, जो मानव जीवन की पूर्णता की चरम अवस्था है। यानी कि हमारा मानव जीवन सफल हो जाएगा यदि हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। और उसका बहुत सिंपल तरीका क्या है, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना शुरू कीजिए। टेक्स्ट नंबर 42। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परमं मनः
मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सह।
कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इंद्रियां काम के कार्यकलापों के विभिन्न द्वार हैं। काम का निवास शरीर में है किंतु उसे इंद्रिय रूपी झरोके प्राप्त हैं, अतः कुल मिलाकर इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ चेतना या कृष्ण भावना अमृत होने पर ये द्वार काम में नहीं आते। थोड़ा सा इसमें एक सूक्ष्म बात है कि केवल इंद्रिय वही नहीं है जो हमें बाहर से दिखाई पड़ते हैं। जैसे आंख का हार्डवेयर तो हमें दिखता है बाहर बाह्य रूप से, लेकिन साथ ही साथ सूक्ष्म रूप से जो इंद्रिय है वो अंदर से भी कार्य करती है। इसे कहते हैं सूक्ष्म इंद्रिय। जो आंख है वो सूक्ष्म रूप से भी हमारे सूक्ष्म शरीर में विद्यमान है। इसके बारे में श्रीमद् भागवतम की तीसरे स्कंद में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो जो इंद्रिय है वो हमारे शरीर से श्रेष्ठ है, ठीक है। अब श्रेष्ठ चेतना जब हो जाती है, जब हमारा चित्त साफ हो जाता है, तो इंद्रियों की वृत्ति अपने आप ही भगवान की तरफ बहने लगती है। आंखों से भगवान का ही दर्शन करना अच्छा लगता है, जिह्वा से भगवान का ही प्रसाद ग्रहण करना अच्छा लगता है या भगवान के बारे में बोलना अच्छा लगता है, कान से भगवान के बारे में ही सुनना अच्छा लगता है। तो अगर इस प्रकार की वृत्ति हमारे जीवन में आ रही है तो हमें समझ में आना चाहिए कि इससे हमारा भगवत प्रेम जो है बढ़ रहा है, इसके लक्षण प्राप्त होना शुरू हो गए। कृष्ण भावनामृत में आत्मा भगवान के साथ सीधा संबंध स्थापित करता है, अतः यहाँ पर वर्णित शारीरिक कार्यों की श्रेष्ठता परमात्मा में आकर समाप्त हो जाती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है कैसे हम लोग स्थापित करते हैं, जैसे ही हम भगवान के बारे में सुन रहे हैं, जैसे ही भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान के विग्रह के पास सामने जाते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इन सभी भक्ति के विधि विधानों के माध्यम से हम साक्षात भगवान का संग करते हैं। आप कहेंगे इनको समझ में क्यों नहीं आता, क्योंकि अभी हृदय हमारा गंदा है, लेकिन ये सत्य बात है कि हम भगवान का सानिध्य प्राप्त करते हैं भक्ति के विधि विधानों का पालन करके, और इसके द्वारा हमारी इंद्रियां शुद्ध होने लगती हैं, हमारी चेतना भी शुद्ध होने लगती है। शारीरिक कर्म का अर्थ है इंद्रियों के कार्य, और इन इंद्रियों के अवरोध का अर्थ है सारे शारीरिक कर्मों का अवरोध। लेकिन चूंकि मन सक्रिय रहता है, अतः शरीर के मौन तथा शरीर स्थिर रहने पर भी मन कार्य करता रहता है, यथा स्वप्ने के समय मन कार्यशील रहता है। तो यहाँ बात आ रही है कि कोई व्यक्ति भले ही अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले, अच्छी बात है, लेकिन अगर इंद्रियां कार्य भोगों में नहीं भी लगी हैं फिर भी मन भोगों में जा सकता है। इसके बारे में तीसरे अध्याय की शुरुआत में भगवान ने बोला था कि इंद्रियों को तो संयम किया हुआ है, लेकिन मन से अगर विषयों का स्मरण कर रहा है तो फिर मिथ्याचार है। किंतु मन के ऊपर भी बुद्धि की संकल्प शक्ति होती है और बुद्धि के भी ऊपर स्वयं आत्मा है। ये इंटरेस्टिंग है, मन प्रायः इंपल्सिवली कार्य करता है, अभी क्या करने का मन कर रहा है उसके अनुसार कार्य करता है, लेकिन बुद्धि के द्वारा हम निर्णय ले पाते हैं कि मेरे लिए क्या कार्य करना उचित है इस समय। और ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे पास कि बुद्धि के द्वारा अगर, और वो बुद्धि अगर शास्त्र सुन करके सुदृढ़ हो जाती है, तो हम लोग समझ सकते हैं, अपने मन को बस में कर सकते हैं कि भाई ये चीज कार्य तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे नहीं करना है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि मन जो है वो इंद्रियों से श्रेष्ठ है और मन से भी श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि के ऊपर आत्मा है, क्योंकि आत्मा अंततोगत व अनुभव करने वाला आत्मा ही है। अतः यदि आत्मा प्रत्यक्ष रूप में परमात्मा में रत रहे तो अन्य सारे अधीनस्थ यथा बुद्धि मन तथा इंद्रिय स्वयं रत हो जाएंगे। यानी अगर आत्मा का संबंध भगवान से स्थापित हो गया तो मन बुद्धि और इंद्रियां अपने आप भगवान की तरफ बहने लग जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हमें कम से कम विधि विधानों का पालन करना चाहिए, जिससे भगवान से हमारा जो संबंध है वो धीरे धीरे अपने आप प्रकट हो, जो भगवान का प्रेम है वो प्रकट हो, और उसके बाद अगर हमें हृदय में प्रेम हो गया तो फिर इंद्रियां मन और बुद्धि को नियमित करना ये बहुत आसान हो जाता है। कठोपनिषद में एक ऐसा ही अंश है जिसमें कहा गया है कि इंद्रिय विषय इंद्रियों से श्रेष्ठ हैं और मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंद्रिय का विषय का अर्थ क्या हुआ? आंखों के लिए इंद्रिय का विषय है रूप, जीवा के लिए है स्पर रसना मतलब स्वादु वस्तुएं, और कान के लिए है शब्द। इस प्रकार से हर ज्ञानेंद्रिय के लिए अलग अलग विषय हैं। और यहाँ बोल रहे हैं कि इंद्रिय जो विषय हैं वो इंद्रिय से श्रेष्ठ हैं, क्योंकि इंद्रियों को वो खींचने की क्षमता रखते हैं। इंद्रिय भोग के विषय जो हैं वो इंद्रियों को खींच लेते हैं। इंद्रियां संयम करने वाले व्यक्ति कितना भी संयम करने का प्रयास करे उन्हें खींच लेते हैं। लेकिन इसमें बोल रहे हैं मन इंद्रिय विषयों से श्रेष्ठ है। तो यानी कि आप देख सकते हैं कि अगर मन कहीं और लगा हुआ है तो इंद्रिय भोग के विषय सामने होते हुए भी व्यक्ति उसमें आकर्षण अनुभव नहीं करता। जैसे किसी का मन अगर बहुत दुखी है और उसके सामने अच्छा खाना भी लाया जाए तो भी उसको खाने के प्रति रुचि नहीं होती है, क्योंकि उसका मन बहुत दुखी होता है। तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं कि मन क्योंकि इंद्रियों से श्रेष्ठ है तो इंद्रिय के विषयों से भी श्रेष्ठ है। अगर मन भगवान में लगातार सेवा में लगा रहता है तो फिर मन को भोगों में जाने का संभावना नहीं रहती। अतः यदि मन भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है तो इन इंद्रियों के अन्यत्र रत होने की संभावना नहीं रह जाती। इस मनोवृत्ति की विवेचना की जा चुकी है, परम दृष्टवा निवर्तते। यदि मन भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो तुच्छ विषयों में उसकी लग पाने की संभावना नहीं रह जाती। तो इसलिए मन का नियंत्रण करने का अर्थ ये नहीं हम खाली एक जगह बैठ करके सोचते रहें, कुछ ध्यान करते रहें। ध्यान फिर ऐसी स्थिति में भोगों का ही होगा। तो इसलिए बेहतर है कि मन को ऐसे भगवत संबंधी कार्य में लगाया जाए जिससे मन को उच्चतर रस प्राप्त हो। कठोपनिषद में आत्मा को महान कहा गया है, अतः आत्मा इंद्रिय विषयों इंद्रियों मन तथा बुद्धि इन सबके ऊपर है। अतः सारी समस्या का हल यह है कि आत्मा के स्वरूप को प्रत्यक्ष समझा जाए। और प्रत्यक्ष समझने का तरीका क्या है? भगवद गीता के माध्यम से ट्रेनिंग प्राप्त करके हम भक्ति के प्रोसेस में सीधे लग जाएं। मनुष्य को चाहिए कि बुद्धि के द्वारा आत्मा की स्वाभाविक स्थिति को ढूंढे और फिर मन को निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगाए रखे। यानी बुद्धि के द्वारा समझे शास्त्र सुन करके कि वो है कौन, और फिर उसके अनुरूप अपने मन को भगवान की सेवा में लगाए रखे। हम लोग सब कृष्ण के अंश हैं, नित्यदास हैं। तो फिर इस निर्णय के द्वारा, बुद्धि की इस निर्णयात्मक शक्ति के द्वारा निर्णय लेकर के व्यक्ति को कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए संकल्प के साथ। इससे सारी समस्या हल हो जाती है। सामान्यतः नवदीक्षित अध्यात्मवादी को इंद्रिय विषयों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, किंतु इसके साथ साथ मनुष्य को अपनी बुद्धि का उपयोग करके मन को सशक्त बनाना होता है। यदि कोई बलपूर्वक अपने मन को भगवान के शरणागत होकर कृष्ण भावनामृत में लगाता है तो मन स्वतः सशक्त हो जाता है। और यद्यपि इंद्रियां सर्प के समान अत्यंत बलिष्ठ होती हैं, किंतु ऐसा करने पर वे दंतविहीन सांपों के समान अशक्त हो जाएंगी। यद्यपि आत्मा बुद्धि मन तथा इंद्रियों का भी स्वामी है तो भी जब तक उसे कृष्ण की संगति द्वारा कृष्ण भावनामृत में सुदृढ़ नहीं कर लिया जाता तब तक चलायमान मन के कारण नीचे गिरने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। तो आत्मा भले ही मन और बुद्धि और इंद्रियों के से श्रेष्ठ है, लेकिन जब तक आत्मा अपनी पहचान इन इंद्रियों से और इंद्रियों के विषयों से करने लगता है, क्षमा कीजिएगा, इंद्रियों के विषयों से नहीं, इंद्रियों से और अपने शरीर से करने लगता है, तो उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो जाती है। जैसे एक बैल है तो बैल बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन उसके नाक में अगर नाथ डाल दी जाए तो एक छोटा बच्चा भी उसे कंट्रोल कर सकता है। उसी प्रकार से हम लोग का इस जगत से कोई संबंध नहीं है। ये जो मिथ्या अहंकार रूपी नाथ है जिसके द्वारा हम अपने शरीर से पहचान करते हैं, उस कारण से हम लोग अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। मन जैसा कुछ कार्य करने के लिए सोचता है उसके अनुरूप हम कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए कि अपने मन को नियंत्रित करें और उसे भगवान की तरफ मुड़ें, तो फिर इंद्रियां कार्य करेंगी भी तो भगवत संबंधी कार्य करेंगी। तो इससे फिर इंद्रियों के द्वारा भगवत रस मिलेगा मन को, तो इंद्रियों के द्वारा हमारे पतन की संभावना नहीं रह जाएगी। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संसभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। किस प्रकार अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाकर हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ये भी इंटरेस्टिंग है कि आपको मालूम भी चल जाए कि शत्रु को जीता कैसे जाएगा, फिर भी उसके लिए आपको शक्ति चाहिए, और ये शक्ति मिलती है भक्तों के संग और भगवान के नाम उच्चारण के द्वारा। भगवान नाम उच्चारण से हमको अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है, जिसके द्वारा हम अपने इंद्रियों के वेग को सहन करना सीखते हैं। तात्पर्य, भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। तो ये ब्रह्म में लीन होने की इच्छा करने की बजाय व्यक्ति को कृष्ण की शाश्वत सेवा में जाने की में संलग्न होने की इच्छा रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी वास्तविक स्थिति है। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है, यानी भोग करने की इच्छा रखता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव के परम शत्रु हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। तो एक बीमारी है जो भोग की इच्छा है, ये एक बीमारी है। तो ऐसा नहीं है कि बीमारी एकदम दुसाध्य है, अगर क्योंकि दवा बहुत प्रबल है, भगवान का नाम और भगवान के भक्तों का संग, भक्ति का विधि विधान, तो इसका सेवन करने से हम इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से देव स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यानी जो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है या कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, तो इसके लिए आवश्यक नहीं है कि उसको तुरंत त्याग दे, ये कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कम से कम सुबह के समय और शाम के समय कृष्ण भावना का अनुशीलन होना चाहिए, और इसे धीरे धीरे हमारी चेतना का विकास होगा। इस संबंध में एक उदाहरण बहुत सुंदर मेरे मन में आ रहा है कि जिस प्रकार से नदी जब किसी को पार करनी होती है तो उसको नदी के वेग के संग भी बहना पड़ता है और साथ साथ नदी को भी वो पार करता है। इसी बात को भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नाम श्रेय करी जतन तुम्हें ठाक आपन काजे। अपने कार्यों में आप रह सकते हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसे करते रह सकते हैं, लेकिन साथ साथ भगवान के नाम का आश्रय लें, नाम सेवा करें, भगवान का नाम उच्चारण करें, भक्ति करें, और इसके द्वारा आप भगवान के धाम जा सकते हैं। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। यानी कि व्यक्ति अगर भोगों की वासना से लिप्त है तो केवल ये चिंतन ही मात्र उसके लिए सफिशेंट नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा, क्योंकि उसके बावजूद भी मन भोगों में जाएगा, और अगर मन जाएगा तो इंद्रियां भी जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है कि कृष्ण भावना का अनुशीलन करे, श्रवण कीर्तन में लगे और साथ साथ अपने कर्म को कृष्ण को समर्पित करने का प्रयास करे। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो कृष्ण भावना का प्रशिक्षण यही है कि हम अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना सीखें उन लोगों से जिनको ये करना आता है, और इसके द्वारा हम काम को जीत सकते हैं। तो भगवत कृपा से आज हमारा श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अध्याय 3 समाप्त होता है। अब हम चौथे अध्याय की चर्चा आगे से करेंगे। हरे कृष्णा।